रज्जू सड़क पर टहलती हुई चारों ओर की हरियाली और बड़ी बड़ी गाड़ियां देखती हुई अमन की घर की ओर बढ़ रही थी। अचानक सड़क पर एक गाड़ी रज्जू के ठीक पीछे आ गई। रज्जू की खूबसूरत पीठ देखकर उस गाड़ी में सवार लोग उसका चेहरा देखने के लिए जोर जोर से हॉर्न बजाने लगे। हॉर्न की आवाज़ सुनते ही रज्जू घबरा गई और मुड़ते ही उसकी साड़ी का पल्लू नीचे गिर गया। रज्जू अब केवल ब्लाउज में उन लोगों के सामने खड़ी थी। रज्जू को देखते ही उन तीनों के मुंह में पानी आ गया और वे गाड़ी की लाइट से रज्जू के जिस्म के एक एक कटाव को देखने लगे। तभी विक्रम गाड़ी से नीचे उतरा और रज्जू के पास गया, उसे करीब से देखने लगा। विक्रम और उसके दोस्तों को लगा कि ये कोई धंधे वाली है जो सड़क किनारे अपना जिस्म बेचने के लिए खड़ी रहती है। तब विक्रम ने कहा, हमारे साथ चलोगी? रज्जू विक्रम को ऊपर से नीचे तक देखने लगी। इतने हट्टे कट्टे नौजवानों को देखकर उसका दिल किसी का साथ पाने के लिए बेचैन होने लगा और वो बिना सोचे समझे विक्रम के साथ जाने के लिए तैयार हो गई। अमन के घर का रास्ता उसके जहन में था और वो लोग भी अमन के घर की तरफ ही जा रहे थे। रज्जू ने विक्रम से कहा, ए नौजवान, तुम मुझे आगे अमन सिंह राठौर के बंगले पर छोड़ देना। तब उन तीनों में से एक आदमी ने कहा, तुम वहां क्या करोगी जाकर? हम लोग हैं ना, हम लोग तुम्हें आज रात जन्नत की सैर कराएंगे। तब रज्जू बोली, वहां जाकर एक आदमी को खाना है, मुझे तो तुम लोग वहां छोड़ देना। तब वो तीनों ड्राइवर समेत उस पर हंसने लगे और उनमें से एक बोला, हम भी किसी अमन सिंह राठौर से कम नहीं हैं, अगर आप चाहें तो एक एक करके हम तीनों को खा सकती हैं। तब विक्रम ने रज्जू के पेट पर हाथ रखकर प्रेस करने लगा। विक्रम के ऐसा करते ही रज्जू के मन में किसी मर्द को पाने की इच्छा और बढ़ गई। विक्रम उसका हुस्न देखकर खुद को रोक नहीं पा रहा था और उसने ड्राइवर को सड़क के किनारे गाड़ी रोकने को कहा। गाड़ी रुकते ही विक्रम रज्जू को जंगल में एक झाड़ी के पीछे ले गया और वहां उसे आनन फानन में निर्वस्त्र करके उसकी जिस्म पर टूट पड़ा। उसे अंदाजा नहीं था कि वो औरत असल में एक जहर से भरी हुई छिपकली थी। विक्रम ने पूरे एक घंटे तक रज्जू के साथ मनमानी की। रज्जू की आवाज़ उस रात बेहद मधोशी वाली थी, जो गाड़ी के पास विक्रम के दोस्तों को भी सुनाई दे रही थी। वे भी अपनी बारी का इंतजार करने लगे। करीब एक घंटे के बाद जब विक्रम थक गया तब वो रज्जू से हटने लगा, लेकिन रज्जू ने उसे और कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे प्यासा छोड़कर कहाँ जा रहा है? विक्रम चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक कितनी ही लड़कियों को मसला था जो 20 मिनट बाद ही रोने लग जाती थीं। लेकिन ये क्या, इसको तो उसने पूरा एक घंटा दिया, फिर भी ऐसा लग रहा था मानो इसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। तब विक्रम ने कहा, रुक जा मेरी रानी, अभी मैं अपने दूसरे दोस्त को भेजता हूँ, तेरी आगे की प्यास वो बुझाएगा। उसकी बात सुनकर रज्जू ने उस पर अपनी पकड़ ढीली कर दी और कहने लगी, जा जल्दी जा और भेज अपने दोस्त को। विक्रम मुस्कुराकर अपनी गाड़ी की ओर बढ़ गया और उसने अपने एक दोस्त को इशारा किया। उसका दोस्त दौड़कर वहां गया और नग्न रज्जू को देखकर उसके भी मुंह में पानी आ गया और वो भी उसके जिस्म पर टूट पड़ा। डेढ़ घंटे के बाद जब वो थक कर उसके ऊपर से जाने लगा तब रज्जू ने उसे भी कसकर पकड़ लिया और बोली, मुझे प्यासा छोड़कर कहाँ जा रहा है? वो लड़का चौंक गया और बोला, फिक्र मत कर मेरी रानी, आज हम तीनों दोस्त तेरे प्यास बुझाकर ही जाएंगे। उसके बाद उसका तीसरा दोस्त भी रज्जू के नग्न जिस्म पर टूट पड़ा और वो भी पूरे एक घंटे तक लगा रहा, लेकिन रज्जू अभी भी प्यासी थी। वे तीनों समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हो रहा था। तब विक्रम ने अपने ड्राइवर की ओर इशारा किया और ड्राइवर, जो पहले ही मदहोश हो गया था, वो दौड़कर उसके पास गया और उसके साथ रिश्ता बनाने लगा। लेकिन रज्जू की प्यास बुझने का नाम नहीं ले रही थी, क्योंकि वे सब इंसान थे और रज्जू एक शैतानी शक्ति थी। उसे सुख तभी प्राप्त हो सकता था जब कोई शैतान या शक्तिशाली आदमी उसके साथ संभोग करता। और चूंकि वे चारों थक चुके थे तब रज्जू उठी और उनके पास आई और बोली, तुम लोगों ने मुझे अधूरा छोड़ा है, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। ऐसा कहकर वो देखते ही देखते छिपकली रूप में आ गई और बिजली किसी तेजी से वहां से निकल गई। रज्जू को अपने सामने छिपकली बनता देख उन चारों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। अचानक विक्रम को उल्टी होना शुरू हो गया और उसकी उल्टी में से हरा हरा जहर निकलने लगा। उन्होंने एक छिपकली के साथ संभोग किया था जिसकी वजह से उनके जिस्म में जहर फैलने लगा था। देखते ही देखते उन चारों के अंदर जहर फैल गया और उन्हें उल्टियां होना शुरू हो गई। आधे घंटे के अंदर ही वे चारों मौत की नींद में सो चुके थे। रज्जू का जिस्म अभी भी प्यासा था और वो अमन के घर के करीब थी। कुछ मिनटों में वो अमन के बंगले के सामने खड़ी हो गई। बंगले से थोड़ी दूरी पर खड़े होकर वो अपने इंसानी रूप में आ गई और बंगले को देखने लगी। उसने देखा नॉर्मल रास्ते में अनगिनत गार्ड खड़े हुए थे। उनकी नजरों से बचकर वो बंगले के अंदर नहीं जा सकती थी। तभी उसे पीछे के रास्ते की ओर एक खिड़की दिखाई दी और वो अपना छोटा रूप करके उस खिड़की की ओर चल पड़ी। उसे आइडिया भी नहीं था कि अमन और तारा वहां नहीं थे। रज्जू तारापरी की खिड़की पर पहुंच चुकी थी। उसने अंदर झांक कर देखा तो एक औरत अपनी गोद में मान का सिर रखे बैठी हुई थी। वो मान को देखकर चौंक गई, लेकिन तभी उसे सारी बात समझ में आ गई और उसे अमन और मान के जुड़वा होने का राज भी पता चल गया, क्योंकि अमित ने रज्जू के अंदर ऐसी शक्ति डाली थी जिससे किसी को देखते ही वो उसके बारे में सब कुछ जान लेती थी। खिड़की से वो कमरे के अंदर आ गई और मान के पेट पर लाल रंग के कपड़े को देखकर चौंक गई। जैसे ही वो कमरे में आई, एक जोरदार आंधी आई जिससे मान के पेट पर रखा हुआ लाल रंग का कपड़ा उड़ गया। रज्जू ने घाव देखा तो वो हैरान रह गई। मान का पेट एकदम गोल कटा हुआ था और उसमें कुछ भी नहीं था, न हड्डी, न मांस, न खून, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। रज्जू मन ही मन सोच रही थी, ये कैसा अजीब सा घाव है। तभी करिश्मा जी बेहोश मान के सिर पर हाथ फेरते हुए कहने लगी, बस मेरा बच्चा, बस थोड़ी देर और, बस तेरा भाई और तारा आते ही होंगे इस काली पहाड़ी को पार करके सामान लेकर आने का। मान अर्थ बेहोशी की हालत में टूटी फूटी आवाज में बोला, हाँ मॉम, आप भी परेशान मत होइए। रज्जू उनकी बातें सुनकर समझ गए कि अमन और तारा वहाँ नहीं है, वे काली पहाड़ी की ओर गए हैं। ये सुनकर रज्जू के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वो सोचने लगी कि ये तो बहुत अच्छा हुआ है कि वे दोनों यहाँ नहीं है। उन दोनों को इस घर में अपने झांसे में लेना मुश्किल हो सकता था, लेकिन वे दोनों मेरे ही इलाके में है, काली पहाड़ी के इलाके में, जहाँ गुरु जी के कारण सबकी शक्तियाँ 4 गुना ज्यादा हो जाती है। रज्जू सोच रही थी, ओ, तो अमन जिन और इंसानी तारा, आप दोनों से मुलाकात लगता है जंगल में ही करनी होगी। ये सोचकर रज्जू मुस्कुराई और वहां से निकलकर जंगल की काली पहाड़ी की ओर चली गई। वहीं दूसरी ओर तारा परी और अमन उस जादुई छाते द्वारा आसमान की सैर कर रहे थे। तारा परी हरे भरे पेड़ पौधे और तरह तरह के फूल वाले बगीचे देखकर बहुत खुश हो रही थी। अमन नहीं पेड़ पौधे देख रहा था और न ही फूल पत्तियां, वो तो केवल तारा परी को देख रहा था जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ऊंचे आकाश में उसके उड़ते हुए बाल रह रहकर अमन के चेहरे पर पड़ रहे थे। तारा परी उस पल को खुलकर एंजॉय कर रही थी और जल्द ही वे घने जंगल में प्रवेश कर चुके थे।